ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 163। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जगत मन से उदय हुआ है। ज्ञानी का मन सत्पथ को प्राप्त हुआ है, इससे उसे जगत की भावना नहीं होती। जैसे बालक को संसार के पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी के निश्चय में जगत कुछ वस्तु नहीं है। हे रामचंद्र जी, जब ज्ञान उपजता है तब जगत कुछ भिन्न वस्तु नहीं प्रतीत होती है। जैसे जल की बूंदे जल में डालिए तो भिन्न नहीं लगती है, वैसे ही ज्ञानी को जगत भिन्न नहीं दिखता। जैसे बीज में वृक्ष होता है, वैसे ही मन में जगत स्थित है। और जैसे वृक्ष बीज रूप है, वैसे ही जगत मन रूप है। जब जगत नष्ट होगा तब मन भी नष्ट हो जाएगा, और मन नष्ट होगा तब दृश्य भी नष्ट होगा। एक का अभाव होने से दोनों का अभाव हो जाता है। मन नष्ट हो तो वासना भी नष्ट हो, और वासना नष्ट हो तो मन भी नष्ट होता है। हे रामचंद्र जी, जगत के भीतर बाहर जो रमता है वही मन है। इससे जब मन को स्थिर करके देखोगे तब जगत की सत्यता न प्रतीत होगी। अज्ञानी के हृदय में जगत दृढ़ स्थित है, इससे वह दुख पाता है। जैसे बालक को अपनी परछाई में भूत दिखता है, जिससे वह दुख पाता है। जो निकट है वह उसको नहीं भासित होता, इससे वह दुख नहीं पाता। हे रामचंद्र जी, यह जगत यदि सत्य होता तो ज्ञानवान को भी प्रतीत होता, पर ज्ञानी को नहीं प्रतीत होता। इससे जगत कुछ वस्तु नहीं है। जैसे एक ही स्थान में दो पुरुष बैठे हो और एक को निद्रा आवे तो उसको स्वप्न का जगत देख पड़ता है, और नाना प्रकार की चेष्टा होती है, पर दूसरा जो जागता है उसको उसका जगत नहीं देख पड़ता। वैसे जो पुरुष परमार्थ सत्ता में जागा है उसको जगत शून्य दिखता है। हे रामचंद्र जी, यह जगत मिथ्या है, उसकी तृष्णा तुम क्यों करते हो? अपने स्वभाव में स्थित हो। यह जगत पर स्वभाव है, यह जानकर चाहे जैसी चेष्टा करो तुमको बंधन न होगा और पूर्व पद की प्राप्ति होगी। जैसे अग्नि से जले सूखे तृण को पवन उड़ा ले जाता है और नहीं जाना जाता कि कहाँ गया, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि से जलाया और निरअहंकारता रूप पवन से उड़ाया हुआ संसार रूपी तृण न जाना जाएगा कि कहाँ गया। जैसे चाहे लाख योजन तक चला जाए तो भी यही देख पड़ता है कि आकाश ही सर्व सृष्टि को धारण किए हैं, वैसे ही सब दृश्य जगत को आत्मा धारण करता है। संसार का शब्द अर्थ आत्मा में नहीं। इसको छोड़कर देखो कि सब शब्द अर्थ का अधिष्ठान आत्मा ही है। हे रामचंद्र जी, रूप अवलोक और मनस्कार मिथ्या उदय हुए हैं, इनका त्याग करो। जैसे मरुस्थल में जलाभास मिथ्या है, वैसे ही आत्मा में जगत मिथ्या और ब्रह्मात्र है। इसके संबंध से जीव दुखी होता है। जैसे रस्सी में सर्प और सीपी में रूपा मिथ्या है, वैसे ही आत्मा में जगत है। तुम आत्म ब्रह्म हो, दुख से रहित अपने स्वभाव में स्थित हो और आत्म दृष्टि से देखो कि सब आत्मा है। अथवा जगत को मिथ्या जानो तो भी शेष आत्मा ही रहेगा। जैसे जागृत स्वप्न और सुषुप्ति का अभाव होने पर शांत पद शेष रहता है, वैसे ही जगत का अभाव निश्चित होने पर आत्मपद शेष प्रतीत होगा। इस जगत का अत्यंत अभाव है और जो दिखता है वह ब्रह्मात्र है। जो एक काल में होता है वह दूसरे काल में नष्ट हो जाता है। स्वप्न में जागृत का अभाव हो जाता है और जागृत में स्वप्न का अभाव हो जाता है, पर सुषुप्ति में दोनों का अभाव हो जाता है। इससे वे ब्रह्मात्र है। विश्व आत्मा का चमत्कार है। जैसे समुद्र में तरंग होते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत है। अहंता से यह उदय होता है और अहम का अभाव होने पर इसका भी अभाव हो जाता है। जिनको अहंता के अभाव का निश्चय हुआ है, वे ही संत और उत्तम पुरुष हैं। उन महानुभाव पुरुषों का अभिमान और भोगों की आशा नष्ट हो जाती है। वे भ्रांति रहित और नित्य ही समाधिस्थ होते हैं। राम जी बोले, हे भगवान, यह मन रूपी मृग संसार रूपी वन में भटकता है, वह समाधान रूप कौन वृक्ष है जिसके नीचे आकर शांत हो? उसके फूल फल और लता कैसे है और वह वृक्ष कहाँ होता है, यह कृपा करके कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस प्रकार समाधान रूप वृक्ष उत्पन्न होता है सो तुम सुनो। सब साधन इसके पत्ते पुष्प और लता अधिक है। हे रामचंद्र जी, यह वृक्ष सब जीवों के कल्याण के निमित्त साधना चाहिए। अब तुम इसका क्रम सुनो। आत्मिक बल से तो यह उगता है और संत जनों के हृदय में यह उपजता है। चित्तरूपी पृथ्वी में लगता है और वैराग्य इसका बीज है। वैराग्य दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो दुख और कष्ट प्राप्त होने से वैराग्य उपजाता है, दूसरे शुद्ध निष्काम हृदय होने पर भी वैराग्य उपजता है। उस वैराग्य रूपी बीज को जब चित्तरूपी भूमि में डालते हैं और निर्वासना रूपी हल फेरते हैं, निर्मल शीतल और हृदय गम्य संतों की संगति और सच शास्त्र रूपी जल जब मन रूपी क्यारी में पड़ता है, तब उस वृक्ष के बढ़ने की आशा होती है। बहुत जल से भी उसकी रक्षा करते हैं। आत्म विचार रूपी सूर्य की किरणों से पुष्ट करते हैं और उसके चहुं फेर धैर्य रूपी बाड़ी करते हैं। तब दान तीर्थ स्नान रूपी चौतरे पर उस बीज को रखकर रखवाली करते हैं कि सूख या जल न जाए। आशा रूपी पक्षी से रक्षा करते हैं कि वैराग्य रूपी बीज को वह निकाल न ले जाए। अभिलाषा रूपी बूढ़े बैल से रक्षा करते हैं कि खेत में प्रवेश करके वह उसको रौंद न डाले। उसके निमित्त संतोष और संतोष की स्त्री मुदिता दोनों को पहरे पर बिठा रखते हैं। इस बीज का नाशक कुहिरा जो मेघ से उपजता है उससे भी इसकी रक्षा करते हैं। संपदा, धन और सुंदर स्त्रियों का प्राप्त होना ही वैराग्य रूपी बीज का नाशक ओला है। इसकी रक्षा का एक सामान्य और एक विशेष उपाय है। तप से इंद्रियों को वश करना, दुखी पर दया करना और शास्त्र का पाठ और जप करना इत्यादि शुभ क्रिया रूपी यंत्र की पुतली इसके पास विद्यमान रखिए तो सब विघ्न दूर हो जाते हैं। दूसरा श्रेष्ठ उपाय यह है कि संतों की संगति करके सत शास्त्रों को सुने। प्रणव जो ओमकार है उसका ध्यान और जप करें और उसका अर्थ विचारें। यही त्रिशूल रूप ओलों के नाश का परम उपाय है। जब इतने शत्रुओं से रक्षा करें तब उस बीज की रक्षा हो। संतों के संग और सच्छास्त्रों के विचार रूपी वर्षा काल के जल से सींचिए तब अंकुर निकलता है और वह खूब लहलहाता है। जैसे द्वितीय के चंद्रमा को सब कोई प्रणाम करता है वैसे ही संतोष, दया और यश रूपी अंकुर निकलता है। उसके दो पत्ते निकलते हैं, एक वैराग्य दूसरा विचार, और वे दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। शास्त्रों से जो सुना है कि आत्मा सत्य है और जगत मिथ्या है उसका बारंबार अभ्यास करना चाहिए। इस जल के सींचने से वे अंकुर दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे और उनके तने बड़े होंगे। हे रामचंद्र जी, जब डाले बड़ी होती है तब रागवेश रूपी वानर उन पर चढ़कर उन्हें ही तोड़ डालते हैं। इससे इस वृक्ष को दृढ़ वैराग्य, संतोष और अभ्यास रूपी रस से पुष्ट करना उचित है। जैसे सुमेरु पर्वत है वैसे ही संतोष से उसे पुष्ट करना चाहिए। जब यह होगा तब उसमें सुंदर पत्ते, डाले, फूल और मंजरी लगेंगी। मार्ग में बहुत दूर तक इसकी छाया होगी और शांति, शीतलता, शुद्धता, कोमलता, दया, यश और कीर्ति इत्यादि गुण प्रकट होंगे। उसके नीचे मन रूपी मृग विश्राम पाकर शीतल होता है। आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक ताप मिट जाते हैं और मन परम शांति पाता है। हे रामचंद्र जी, यह मैंने तुमसे समाधान रूपी वृक्ष कहा है। जहां यह वृक्ष उत्पन्न होता है उस स्थान की शोभा कही नहीं जा सकती। जो इस वृक्ष की शरण जाता है उसके ताप मिट जाते हैं और वह शांति पाता है। यह वृक्ष ब्रह्म रूपी आकाश के आश्रय से बढ़ता है और वैराग्य रूपी रस और संतोष रूपी छल से पुष्ट होता है। जो पुरुष इसका आश्रय लेगा वह शांति पावेगा। हे रामचंद्र जी, जब तक मन रूपी मृग इस समाधान रूपी वृक्ष का आश्रय नहीं लेता तब तक भटकता फिरता है, शांति नहीं पाता। जैसे मृग वन में भटकता है वैसे ही मन मृग भटकता है। द्वैत अज्ञान और प्रमाद रूपी बधि उसे मारने लगते हैं, इससे दुख पाते हैं। जब भय से इंद्रिय रूपी गांव वासियों के निकट जाता है तब वे आप ही इसको देखकर पकड़ लेते हैं, अर्थात विषयों की ओर खींचते हैं और उससे वह बड़ा कष्ट पाता है। इनके भय से जब फिर वन में जाता है तो वह विषयों के न मिलने की तपन से दुखी होता है। जब उसको भी त्याग कर रस रूपी स्थानों को शांति के निमित्त दौड़ता है तब काम रूपी कुत्ता काटने को दौड़ता है और उसके भय से जब फिर वैराग्य रूपी वन की ओर दौड़ता है तब क्रोध रूपी अग्नि जलाती है, वासना रूपी मच्छर दुख देते हैं, लोभ और मोह रूपी अंधेरी इसे अंधा बना देती हैं। निदान पुत्र और धन रूपी हरे हरे तृणों को देखकर यह उनको ग्रहण करता है तब गड्ढे में गिर पड़ता है। वह गड्ढा तृण से ढका हुआ है, वह तृण पुत्र और धन है। उनको सुंदर देख यह ममता रूपी गड्ढे में गिर पड़ता है, इस प्रकार दुख पाता है। हे रामचंद्र जी, जब मनुष्य झूठ बोलता है तब मृत्तिका में लौटने की सी चेष्टा करता है और जब मन रूपी भेड़िया आता है तब वह उसको भक्षण कर जाता है। जब समाधान रूपी वृक्ष से जीव विमुख होता है तब इतने कष्ट पाता है और जब मन रूपी भेड़िए से छूटता है तब आशा रूपी जंजीर में बंधा जाता है। निदान जब तक इस वृक्ष के निकट नहीं आता है तब तक बड़े कष्टदायक स्थानों को जाता है, तमाल वृक्षादिक के तले भी जाता है और कंटक के वृक्षों के तले भी जाता है, परंतु शांति किसी स्थान में नहीं पाता, बड़े बड़े कष्टों को ही पाता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मूढ़ मन रूपी हरिण भटकता है, इससे मेरा यही आशीर्वाद है कि तुमको उस वृक्ष का संग हो। जब उस वृक्ष के निकट जीव जाता है तब शांति होती है, जब उसके नीचे आ बैठता है तब तीनों ताप अंतःकरण से मिट जाते हैं। जितने विषय रूपी वृक्ष है उनके निकट गया हुआ मन रूपी मृग शांति नहीं पाता, पर जब समाधान रूपी वृक्ष के निकट आता है तब शांति पाता है और उसकी बुद्धि खिल उठती है, जैसे सूर्यमुखी कमल सूर्य को देखकर खिल उठता है। उस वृक्ष के अनुभव रूपी फल और शास्त्र विचार रूपी पत्तों और फूलों को देखकर वह बड़ा आनंद पाता है। फिर उस वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है और पृथ्वी का त्याग करता है। जैसे सर्प अपनी पुरानी केंचुल को छोड़ देता है और नूतन सुंदर शरीर से शोभित होता है। जब उस वृक्ष पर चढ़ता है तब गिरता नहीं, क्योंकि उसके पत्ते बहुत मजबूत हैं। उसके आश्रय से ठहरता है। समाधान रूपी वृक्ष के पत्ते सच्शास्त्र है। जब समाधान रूपी वृक्ष से जीव उतरता है तब शास्त्र के अर्थ में ठहरता है, और जितने पदार्थ देखता है वे उसे मिट्टी धूल से जान पड़ते हैं। तब वह अपनी पिछली चेष्टा को स्मरण करके पछताता है। जैसे कोई मद्यपान करके नीच चेष्टा करे तो जब मद उतरता है तब पछताता है, वैसे ही मन रूपी मृग अपनी पिछली चेष्टा को धिक्कारता है और कहता है कि बड़ा आश्चर्य है जो मैं इतने काल तक इस वृक्ष से विमुख हुआ भटकता रहा, अब मुझको शांति हुई है। जैसे दिन की तपन न रहने पर चंद्रमुखी कमलिनी को शांति होती है, वैसे ही मन रूपी मृग को शांति हो जाती है। हरि हरि ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।